तो कल हमने चर्चा की कि हमारी जो प्रेजेंट डे सिविलाइजेशन है वो किस प्रकार से अधार्मिकता की तरफ ले जा रही है सबको, और फिर हमने आगे चर्चा की कि तो क्या करें, इसका विकल्प क्या है। तो उस संदर्भ में हमने चर्चा की तो क्या फिर वो जो वैदिक विधि है यज्ञ करने की, क्या उसको इस्टैब्लिश करने का प्रयास करें, यज्ञ विधि भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए डेमिगॉड्स और उन सबके यज्ञ विधि, क्या वो इस्टैब्लिश करने का प्रयास किया जाए, उसके बारे में हमने क्या चर्चा की थी। यस हाँ यस, तो वो जो पूरा यज्ञ प्रोसेस है वो बहुत ही डिटेल्ड मैकेनिकल प्रोसेस है, जिसके लिए आज के वर्तमान समय में प्रदूषण के समय में दूषण के समय में वो प्रॉपरली इसको एग्जीक्यूट करना संभव नहीं है, और वो बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है, कई कई जन्मों में चलने वाला प्रोसेस है। और इस प्रकार से जो उससे शुद्धि होनी चाहिए वो होना बहुत मुश्किल है। और उससे क्या समस्या थी, उसमें भी एक फॉल्ट था ना, बहुत बड़ा फॉल्ट जो हमने डिस्कस किया था, बंधन, कर्म बंधन, शरीर बंधन। हाँ, वो जो यज्ञ विधि है उसमें भी देव देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं, किस लिए, कि हमें भौतिक सुख प्राप्त हो जाए, लेकिन जब तक ये भौतिक सुख भोगने की जगत में इच्छा है तब तक शरीर तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, निम्न योनि में नहीं जाएंगे, लेकिन मनुष्य योनि में भी शरीर मतलब दुख क्लेश, तो मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य तो अंततः उससे पूरा नहीं हो रहा, धीरे 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 हमारी शुद्धि होगी और फिर एक दिन हमें वापस अल्टीमेटली इसी पॉइंट पे आना पड़ेगा कि वी हैव टू सरेंडर टू कृष्णा। इस जगत में भोग करने से हम इसी भौतिक जगत में ही जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। सो अल्टीमेटली हमारा गोल है कि हमें जो भगवान के साथ हमारा सेवा का संबंध है, निस्वार्थ भगवान की सेवा का संबंध है, जब तक वो रिवाइव नहीं होगा, जब तक वो पुनर्जागृत नहीं होगा, तब तक हमारा ये भव बंधन चलता रहेगा। इसलिए वो अल्टीमेट गोल तक पहुंचने में ये जो यज्ञ का प्रोसेस है ये हमें एक शुद्धि देता है, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है ये प्रोसेस जो हमें वहां तक ले जा सके, और ये इतना स्लो है कि उसके लिए हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं, विशेष रूप से आज के कलयुग में। तो फिर नेक्स्ट हमने प्रोपोजिशन रखा था, तो क्या फिर सब कर्म छोड़ दें, उसके बारे में हमने क्या सुना, क्या वो संभव है, उसके बारे में क्या, व्हाट इज अ, नहीं नहीं संन्यास, संन्यास के बारे में, कर्म संन्यास सब कुछ छोड़ दें, उससे भाई उसमें क्या समस्या है। हाँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि अभी हम शरीर है, शरीर पे आश्रित हैं, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है, है ना। इसलिए अर्जुन का हमने एग्जांपल लिया था, अर्जुन का भी यही प्रस्ताव था कि मैं जंगल चले आता हूँ, सब छोड़ देता हूँ, तो भगवान ने कहा नहीं, ये तुम्हारा जो गुण है वो तुम्हें फोर्स करेगा काम करने के लिए, कर्म करने के लिए, और शरीर को मेंटेन करने के लिए भी कुछ ना कुछ कर्म करना जरूरी है, इसलिए वो प्रैक्टिकल नहीं है। ओके, तो फिर हम आगे बढ़े थे, तो फिर भगवद गीता का क्या सॉल्यूशन है फिर हमारे लिए, हमें क्या कर्तव्य है, हमारा वास्तव में हमारा कर्तव्य क्या है, जो उन लोगों का जो समझ रहे हैं कि इस भौतिक जगत में हम अगर भोग करने का प्रयास करेंगे वो वास्तव में हमारा सुख प्रदान नहीं करेगा, वो सब क्षणिक है। अल्टीमेट हमारा जो रियल सुख है, आध्यात्मिक सुख, वो केवल भगवान की कैसी सेवा जिसमें कोई बदले में कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, ऐसी सेवा में प्योर सर्विस, प्योर डिवोशनल सर्विस, उसको बोलते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस मतलब सेवा, भगवान की सेवा, भगवान की सेवा इम्प्योर भी हो सकती है, सेवा कर रहे हैं लेकिन भगवान देखो मैं आपकी इतनी सेवा कर रहा हूं, बदले में आप मुझे इतना देना, हाँ वो भी एक सेवा है लेकिन वो प्योर नहीं है, है ना। लेकिन हमारी जो संपूर्ण संतुष्टि है आत्मा की वो केवल प्योर सर्विस में हो सकती है। प्योर सर्विस की परिभाषा दी है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। प्योर डिवोशन सर्विस, उत्तम भक्ति वो क्या है, ऐसी भगवान की सेवा जिसमें कोई भौतिक इच्छा के हेतु से वो सेवा नहीं की जा रही है। अन्य अभिलाषिता शून्य, जीरो, अन्य कोई अभिलाषा नहीं है, केवल भगवान को संतुष्ट करना, किस लिए, क्योंकि भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, इसलिए दैट्स इट। और आगे चल करके प्रेमवश भगवान के संतुष्ट करने में हमें ऑटोमेटिकली वी आर सेटिस्फाइड, उसको प्रेम कहते हैं। वी जस्ट वॉन्ट टू प्लीज, दैट्स इट, विदाउट एनी रीजन, अहितु की, उसको प्रेम कहते हैं। हमें इस बात का भी एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको हम प्रेम कहते हैं एक्चुअली वो तो लस्ट होता है, अंततः उसमें हमारी अपनी इंद्रियों का भोग की इच्छा होती है। लेकिन भगवान के साथ जो हमारा संबंध होता है वो शुद्ध प्रेम होता है, उसमें केवल भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा होती है। तो इस भावना से अन्याभिलाषता शून्यम, फिर आनुकूल्यन, भगवान की जिसमें प्रसन्नता है वैसा ही कार्य करना, वैसी ही सेवा, उस प्रकार से सेवा करना, तो वो उत्तम भक्ति कहलाती है। तो ये भक्ति करना, यही मोबाइल्स प्लीज किसी और का भी अगर है तो साइलेंट में रख दीजिए फॉर 1 आवर सो दैट वी डोंट गेट डिस्टर्ब्ड। तो अभी ठीक है, भगवान की हम सेवा करें बिना किसी अभिलाषा के, तो फिर प्रैक्टिकल इस जगत में कैसे जिए फिर, वो हम लास्ट में स्टॉप किए थे, लास्ट डिस्कशन की भगवद गीता के अंदर वो उपाय है कैसे हम बिना ग्रीड लस्ट से ड्राइव ड्रिवन हुए शुद्ध भक्ति इस भौतिक जगत में रह के कैसे कर सकते हैं। उसका नाम है दैव वर्णाश्रम, दैव वर्णाश्रम। तो भगवान के आयोजन है कि मनुष्यों को भगवान को केंद्रित रखते हुए अपनी सभी जो भी आधारभूत भौतिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना चाहिए। भगवान ने जिस प्रकार से हमें निर्देश दिए हैं उसके अनुसार, यानी टारगेट होना चाहिए, जहां तक हमारे भौतिक संसार की बात है, जितना आधारभूत आवश्यक है उतना उसके लिए वो टारगेट लेकर के करना है, और उसमें भी ये विचार करते हुए कि क्या पाप है क्या पुण्य है, जो शास्त्रों में निर्दिष्ट है वो करना है। और साथ साथ में जो हमारा नित्य कार्य है श्रवणम कीर्तनम, वो साथ साथ करना है, उसके लिए समय बचाना है। तो भगवान भगवद्गीता में कहते हैं कि दो प्रकार के स्वधर्म होते हैं, स्वधर्म अपि चावेक्ष, स्वधर्म मतलब अपना धर्म, ठीक है, दो प्रकार के हमारे स्वधर्म होते हैं। हम आत्मा हैं और हमारा एक शरीर है, तो हमारे दो प्रकार के स्वधर्म बनते हैं, एक शरीर से संबंधित और एक आत्मा से संबंधित। शरीर तो अभी टेम्परेरली, अभी इस जगत में जब तक है तब तक शरीर है, इसलिए ये जो शरीर संबंधी कर्तव्य हैं ये टेम्परेरी हैं, लेकिन आत्मा संबंधित जो कर्तव्य हैं वो नित्य हैं, वो अभी भी हैं और हमेशा से रहेंगे। भगवान के पास जाने पर भी वो रहेंगे, वो कार्य भगवान के साथ में रहने में भगवान वो नित्य रूप से रहेंगे, ठीक है। तो दो कैटेगरी हो गई हमारे कर्तव्यों की, हमारे कर्तव्यों की दो कैटेगरी हो गई, एक आत्मा के संबंध में जो हमारे कर्तव्य हैं वो नित्य हैं इटर्नल एक्टिविटीज, और दूसरा शरीर के संबंध में जो हमारे कर्तव्य बने हैं वो, ठीक है। तो आत्मा के संबंध में जो हमारे कर्तव्य हैं, जो नित्य कर्तव्य हैं, उसको बोलते हैं नवविधा भक्ति। उसके 9 प्रकार हैं उसके, भगवान की उस प्रकार से सेवा करने का, आत्मा भगवान की जो सेवा करते हैं उसके प्राइमरली 9 प्रकार हैं। सबसे पहला है श्रवणम, हियरिंग, भगवान के विषय में सुनना भक्तों से, क्योंकि सुनने से हम फिर अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा करने के लिए तैयार होते हैं। हाँ, सुनना पड़ेगा ना भगवान को क्या चाहिए, तभी तो हम वो दे पाएंगे भगवान को। तो इसे श्रवणम, और श्रवणम करने से हम पूरी तरह से जितना अधिक भगवान के बारे में सुनते हैं उतने अधिक हम शुद्ध होते हैं, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, जिससे हम पूरी हृदय से पूरी भावना से भगवान की सेवा करवाएं, ठीक है। इसलिए श्रवणम जो है वो सबसे पहली सेवा है, वो खुद अपने आप में सेवा भी है, क्योंकि वो हमें, वो भगवान को प्रसन्न करती है जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं, और दूसरा वो हमें तैयार करती है सही प्रकार से भगवान की सेवा करने में, भगवान के आदेश का पालन करने में। फिर दूसरा है कीर्तनम, कीर्तनम मतलब भगवान का गुणगान गाना, भगवान के विषय में दूसरों को बताना, वो होता है कीर्तन। तो अभी आप लोग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, श्रवणम, और मैं क्या करने का प्रयास कर रहा हूँ, कीर्तनम। मैं आपको भगवान के विषय में जितना मैंने सुना है मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस तरह से मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, और आप इस समय सेवा कर रहे हैं सुन करके, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आपने देखा हम वहाँ पर कल जहाँ थे तो वहाँ पर एक फोटो लगाया है, फिर वहाँ पर आरती होती है, ये सब शास्त्र में बताया गया है कि भगवान मंदिर में भगवान के एक अर्च विग्रह को स्थापित करना चाहिए, और फिर कैसे उनकी पूजा सेवा होती है, भगवान को नैवेद्य चढ़ाया जाता है, पोशाक पहनाई जाती है, ये सब अलग अलग तरीके हैं जिससे हम भगवान का एक रूप जो हमारे सामने उपस्थित होता है, जिनको हम देख सकते हैं, जिसको विग्रह बोलते हैं, अर्चा विग्रह, उनको अलग अलग प्रकार से उनकी सेवा करना, वो एक अंग है सेवा का। भगवान के सामने मंदिर में भगवान के सामने जाकर वंदना करना, उनकी स्तुति गाना, प्रार्थना करना, दास के रूप में मंदिर साफ करना, अलग अलग प्रकार से उनके लिए फूल पुष्प इकट्ठा कर अर्पित करना, अलग अलग, ये सब दास्यता की भावना में, एक मित्र के भावना में अलग अलग प्रकार से उनकी सेवा करना, और अंत में अपना पूरा जीवन सब कुछ भगवान के ये न्योछावर करना। तो ये 9 अलग अलग अंग हैं जिससे जो ये आत्मा के नित्य कार्य हैं, यानी ये जो श्रवणम कीर्तन में अभी भी कर रहे हैं, और ये जब भगवत धाम में भी यही होता है, ऐसा नहीं कि अभी कर रहे हैं वहाँ पर नहीं होगा, ये नित्य है, नित्य कार्य है। अभी हम उसका अभ्यास कर रहे हैं, वहाँ वो स्वाभाविक रूप से होगा, वहाँ वो प्रेम वश होगा, अभी हम वो प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, वहाँ वो नेचुरली होगा, आउट ऑफ लव होगा, अभी वो लव प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो भक्ति का, भगवान की सेवा का ये एक यूनिक प्रिंसिपल है कि जहां पर हमें पहुंचना है जिन क्रियाओं को प्रेम, तो वही क्रियाओं को अभी करने से हम वो क्रियाओं वो स्थिति में पहुंच जाते हैं। अभी उसको हम साधना की तरह से कर रहे हैं, प्रैक्टिस की तरह से कर रहे हैं, वही प्रैक्टिस करते 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 उसके पीछे जो नेचुरल भावना है वो डेवलप हो जाती है, एक्टिविटी वही रहती है, केवल भावना पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। तो यही जो एक्टिविटीज है, 9 प्रकार की एक्टिविटीज, दीज आर इटर्नल एक्टिविटीज। तो ये हमारा एक प्रकार का स्वधर्म हुआ, ये हर मनुष्य को करना चाहिए, चाहे वो कोई से भी शरीर में हो, चाहे वो स्त्री के शरीर में है, चाहे पुरुष के शरीर में है, कोई भी सोसाइटी के अंदर उसका बॉडी के रिलेटेड कोई भी रोल हो, ये कॉमन एक्टिविटीज हैं, क्योंकि हम सभी आत्मा हैं। तो जो लोग भी भगवान के साथ अपना शाश्वत संबंध स्थापित करना चाहते हैं, ये कॉमन एक्टिविटीज हैं जो सबको करनी, ये एक प्रकार का स्वधर्म हो गया, ठीक है। तो हमें दूसरी प्रकार का स्वधर्म है कि अभी शरीर संबंधी स्वधर्म, वो क्या है कि शरीर को मेंटेन करना है। अभी मनुष्य शरीर तो यानी एक सोसाइटी बनती है, एक समाज बनता है, कई सारे मनुष्य साथ में रहते हैं तो एक समाज बनता है, ठीक है। तो जैसे ये शरीर के मुख्य रूप से 5 मुख्य डिपार्टमेंट हैं जिनसे पूरा शरीर सही प्रकार से चलता है। एक है ब्रेन, मस्तिष्क, दूसरा है बाहु, हाथ, तीसरा है ये पेट, उदर, और चौथा है ये पैर। मस्तिष्क जो है उसका काम क्या होता है, शरीर की सारी गतिविधियों को, हाथ को, पैर को, सबको मार्गदर्शन देना, ये मस्तिष्क का काम है। बाहु का काम क्या है, पूरे शरीर को प्रोटेक्शन देना। और पेट का काम क्या है, शरीर को पोषण देना, ठीक है। और पैर का काम क्या है, सपोर्ट करना पूरे शरीर को। तो इस प्रकार से ये शरीर में यदि चारों भाग सही से चल रहे हैं तो पूरा शरीर सही से काम करेगा। उसी प्रकार से मनुष्य समाज में भी ये 4 विभाग चाहिए अगर पूरे मनुष्य समाज को सही प्रकार से कार्य करना है। तो मनुष्य समाज में एक विभाग होना चाहिए मस्तिष्क की तरह, जो पूरे समाज को मार्गदर्शन दे सके, हर प्रकार का मार्गदर्शन, कोई भी क्रिया, भौतिक क्रिया, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार, क्योंकि मार्गदर्शन अंततः हमें कहां से मिलेगा, भगवान से मिलेगा। धर्म की तरफ चलना है तो भगवान की शिक्षा के अनुसार चलना पड़ेगा। तो एक ऐसा वर्ग चाहिए मनुष्यों का जो शास्त्रों को भली भांति जानता हो, हर सिचुएशन में क्या डिसीजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब कुछ जानते हों, ऐसा एक विभाग चाहिए, ठीक है। और उनका कार्य होना चाहिए कि वो पूरे मनुष्य समाज को मार्गदर्शन दें। तो प्राइमरली ये वो लोग हैं जो टीचर्स हैं, जो गाइड हैं, और मेनली आचार्य, सन्यासी, वो लोग जो कि गाइड करते हैं पूरी सोसाइटी को। दूसरा विभाग समाज में चाहिए जो हाथ के समान काम करे रक्षण प्रदान करने का, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, शास्त्र के अनुसार। हर काम का बेसिस है शास्त्र, क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं वो स्वधर्म जो हमें भगवान की तरफ ले जाए, जो भगवान से कनेक्टेड हो, जो भगवान ने दिया है, ठीक है, वो व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। तो ये एक डिपार्टमेंट चाहिए जो धर्म के अनुसार, जो देख सके कि हर एक व्यक्ति अपने सही प्रकार से कार्य में लगा हुआ है, और सबको प्रोटेक्शन है, सबको धार्मिक, सबको जो क्रिमिनल्स हैं उनसे रक्षण सबका प्रदान करना, ये उसका कार्य है, ठीक है। और तीसरा डिपार्टमेंट है जो पेट के समान है, वर्ग समाज के अंदर चाहिए, वो जो सभी के शरीरों को मेंटेन करने के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो सबको प्रोड्यूस कर सकें, अनाज मुख्य रूप से, और दूध और अलग अलग इस प्रकार की चीज़ें, वेजिटेबल्स, है ना, लाइक दैट। और इसमें ही और वर्ग भी आ गए, जैसे कपड़े, बेसिक नेसेसिटीज जो भी हैं, घर के बनाने का सामान, लाइक दैट। और फिर चौथा डिपार्टमेंट है जो पैर की तरह से असिस्ट कर सके, सपोर्ट कर सके, तो उसमें जनरल असिस्टेंस, जैसे कोई भी ऊपर के वर्ण हैं उनको असिस्ट करने का काम वो कर सकें, और अलग अलग प्रकार के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के कार्य, जैसे कि कुछ लोहार, सुनहार, ये सब कार्य। तो इस प्रकार के ये जो चार विभाग हैं, अगर समाज में ये चार विभाग हैं तो हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, और इस तरह से जिससे कि हम धीरे धीरे भगवान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो जो पहला विभाग है, जो मस्तिष्क है, वो विभाग है जिसको शास्त्रों में कहा गया है ब्राह्मण वर्ण। तो ब्राह्मण का कार्य क्या है कि वो शास्त्र के अनुसार पूरे समाज को दिशा निर्देशन दे। दूसरा वर्ण है, दूसरा विभाग है क्षत्रिय, जो पूरे समाज को एडमिनिस्ट्रेशन दे सके और उनको रक्षण प्रदान कर सके। तीसरा विभाग है वैश्य, जो कृषि, गोरक्षा से सभी को अन्न, दूध, ये सब चीज़ें उपलब्ध करा सके, और ट्रेड, ट्रेड इन चीज़ों के आधारित ट्रेड, ठीक है। और चौथा विभाग है शूद्र, जो जनरल असिस्टेंस, असिस्टेंस सेवा, बाकी अन्य वर्णों की असिस्टेंस दे करके समाज में अंदर अपना योगदान दे सके। तो ये चार डिपार्टमेंट के द्वारा हमारी सभी भौतिक समाज की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, शारीरिक आवश्यकताएं, मानसिक आवश्यकताएं, वो सब पूरी हो सकती हैं। और ये पूरी जो वर्णाश्रम व्यवस्था है तो इसमें टारगेट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, जितना जरूरी है शरीर को मेंटेन करने के लिए उतना। इसीलिए उसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का स्थान नहीं है, हाँ विलेज बेस्ड, लोकल बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे आप देखते हैं पहले छोटे छोटे स्केल पर लोहार, कुम्हार, सुनहार, मेटल से भी काम होता था, लेकिन स्मॉल स्केल, क्योंकि एक लोकल एरिया में रह करके जितने लोग वहाँ रह रहे हैं वहाँ पर जो चीज़ प्रोड्यूस हो सकती है नेचुरली, उसको प्रोड्यूस करना और उसी को कंज्यूम करना और उसी से अपनी आधारभूत आवश्यकताएं सब पूरी हो सकती हैं, लोकलाइज लिविंग। तो हमारा जो वैदिक कल्चर का, और वैदिक कल्चर ही नहीं पूरे संसार में इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ये सेटअप था, गांधी जी ने जिसको बोला ग्राम स्वराज, विलेज एक ऐसी यूनिट जो सेल्फ सफिशिएंट यूनिट हो, एक या दो तीन विलेज मिला करके एक ऐसी यूनिट जो सेल्फ सफिशिएंट हो, यानी जो भी बेसिक आवश्यकताएं हैं वो स्थानीय चीजों से ही उत्पन्न की जाएं, स्थानीय लोगों के लिए, कंज्यूमर भी वही है, प्रोड्यूसर भी वही है, रॉ मटेरियल भी वही है, ऐसी व्यवस्था, और ये इकोनॉमिक हो गई। और फिर ये भगवान की जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, इसके अंदर क्योंकि सादा जीवन है इसलिए लोभ अननेसेसरी बढ़ने का चांस नहीं है। लेकिन आज का जैसे हमने डिस्कस किया, आज का जो युग है उसमें सेंट्रल पॉइंट है लोभ, ग्रीड। देर इज एवरीवन, देर इज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। भगवान ने सबके लिए जो आधारभूत आवश्यकता के लिए सबके लिए पर्याप्त मात्रा में, उसी कुछ कमी नहीं है किसी को भी। आज जो हमें कमी महसूस हो रही है स्कैर्सिटी, उसका बेसिक कारण क्या है? ग्रीड, हवस। हमारी कोई लिमिट नहीं रह गई है। नहीं तो आप देखिए रोटी कपड़ा मकान के लिए कहां दिक्कत है, लेकिन हमारी आज इच्छाएं जो है वो अनगिनत है। क्योंकि लोभ के कारण क्या होता है, हम कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। कितना ही मिल जाए उसमें संतुष्ट नहीं होते, असंतुष्ट रहते हैं हमेशा। और ये लोभ के कारण फिर चिंताएं और सारी कुरीतियां, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, क्रोध, ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद लोभ के पीछे चली आती है। तो अगर हमें मनुष्य समाज को अच्छे से चलाना होगा तो ये लोभ हटाना होगा। और लोभ कैसे हटेगा? जब हम भगवान पे केंद्रित जीवन जिए। और ये दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है वर्णाश्रम व्यवस्था में कि भगवान पे आश्रित जीवन है ना। जब खेती पे आश्रित जीवन है तो हम ये समझते हैं कि वर्षा पे खेती आश्रित है, और वर्षा आश्रित है यज्ञ पे, भगवान की सेवा पे, भगवान के आदेशों का पालन करने पे। लेकिन जितना हम आधुनिक व्यवस्था में रहते हैं उतना हमें लगता है कि एवरीथिंग इज मैन मेड, भगवान तो बीच में दिखते ही नहीं है। अल्टीमेटली वो भी भगवान की व्यवस्था है, क्योंकि ये सब रॉ मटेरियल सब कहां से आया है, सब भगवान ने ही दिया है। लेकिन कृत्रिम रूप से हम उसको प्राकृतिक चीजों से कृत्रिम मैनिपुलेशन कर करके उसको बनाते हैं, तो सामान्य व्यक्ति के लिए हर चीज इट लुक्स लाइक सब चीज आदमी बना रहा है ना। और पूरा प्रोपेगेंडा ऐसा है कि भगवान पिक्चर में नहीं है, सब हम ही बना रहे हैं। तो इसलिए वो जो पूरा सोसाइटी है उसमें भगवान के ऊपर डिपेंडेंस से हम दूर चले जाते हैं। हम प्रकृति की गोद में जब जीते हैं तो भगवान को याद करना बड़ा आसान होता है। जितना हम प्रकृति गोद से दूर जाते हैं उतना भगवान को याद करना मुश्किल हो जाता है। अगर हमारे पास हम खेत में और खेती पे आश्रित जीवन है तो कुछ भी होगा तुरंत हमें दिखेगा हर समय, जहाँ भगवान कैसे डायरेक्टली सब चीज बनाए हैं, ये सब चीज उत्पादन कर रहे हैं। आप देखिए एक बीज, मक्का का एक बीज होता है, उसको हम बोते हैं और उससे एक पौधा निकलता है। उस पौधे में कम से कम एक मक्का का क्या बोलते हैं उसको, हैं, भुट्टा। उसमें एक में कितने बीज होते हैं, कितने कितने अराउंड, यस अराउंड 250। एक बीज से इतना मल्टीप्लाई होता है। आप उसमें क्या करते हैं, बोते हैं, पानी देते हैं, फिर देखते हैं, बस बड़ा होता है। किसी ने तो व्यवस्था की है ना। वो हमें इतना ही कम काम करने की जरूरत है, करेक्ट, इतना ही कम काम करने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि हम लोगों को उससे संतुष्टि नहीं, अरे केवल बस खाना, नहीं नहीं ऐसे कैसे, हमें बहुत सारी चीज़ चाहिए। और बहुत सारी चीज़ को बनाने के चक्कर में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट किए हमने, और उसमें पूरा बंध गए हैं पूरा, है ना। उसको बनाने में इतनी शक्ति आती है, उसको मेंटेन करने में शक्ति आती है ना। और इसलिए पूरी हमारी सोसाइटी कॉम्प्लिकेट हो गई। और जैसे हमने कल देखा पाप पूर्ण कृत्य से वो लिप्त हो गई है, और भगवान तो उनका तो चिंतन ही चला गया है। तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि अपने जो कार्य करने हैं हमें ये संसार से रिलेटेड, माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान का स्मरण करते करते करने। तो हमारे आधुनिक जो कार्य हैं वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और भगवान के आदेश के विरुद्ध हैं, इसलिए वो करते करते हम कैसे भगवान का चिंतन करेंगे। अर्जुन क्षत्रिय थे, अर्जुन तो धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे, इसलिए उनके लिए युद्ध करते करते भगवान का स्मरण करना सरल था ना, कि मैं भगवान के लिए युद्ध कर रहा हूँ, भगवान का आदेश है। तो अगर आप ऐसा काम करेंगे अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए जो भगवान के द्वारा निर्दिष्ट है, तो आप भगवान का स्मरण कर पाएंगे। और यदि आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जो भगवान के विरुद्ध है, भगवान के आदेश के विरुद्ध है, तो फिर कैसे चिंतन करेंगे, मुश्किल होगा। एक दूसरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वर्णाश्रम सोसाइटी में और जो आधुनिक समाज है, आधुनिक समाज में हम काम करते हैं उसके पीछे मोटिवेशन क्या होता है, मुझे कमाना है, मुझे कमाना है, मैंने इतना किया मुझे कितना मिला, फोकस कहां रहता है, मुझे क्या मिला, फोकस यहां रहता है मुझे कितना मिला, मुझे कितना मिला। लेकिन वर्णाश्रम सोसाइटी में मैंने समाज के लिए क्या किया, कर्तव्य प्रधान। मोटिवेशन कहां से आता है लोगों को, आजकल लोगों को मोटिवेशन कहां से आता है काम करने का, कितना मिलेगा, करेक्ट, मैं गलत बोल रहा हूं, मोटिवेशन यहीं से आता ना, कहीं भी आप जाओगे पैकेज कितना है बताओ, ज्यादा वहां है वहां है, ठीक है। अगर किसी को बोले ठीक है आपको जॉब पे आना है कुछ दिन और पैसा नहीं मिलेगा तो लोग जाएंगे, नहीं जाएंगे, यानी उनका पूरा मोटिवेशन कहां से आ रहा है, पैसा, मुझे पैसे, सेल्फिशनेस, क्योंकि ग्रीड है ना, इसलिए हमारा पूरा मोटिवेशन का केवल यही है कि मैं कितना भोग कर दूं, मैं कितना एंजॉय कर लूं, है ना। लेकिन एक वर्णाश्रम सोसाइटी में जिसमें केंद्र में भगवान है और शास्त्रों पर आधारित पूरा जीवन है, वहां पर मोटिवेशन आता है कि भगवान के द्वारा ये दिया गया मेरा कार्य है, मेरा ये कर्तव्य है समाज के प्रति, अगर मैं किसान हूं तो मेरा कर्तव्य है कि मैं सबके लिए अनाज उत्पन्न करूं, यहां से मोटिवेशन आता है कि मुझे अपना कर्तव्य निभाना है, उसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। आजकल जो हमारा पूरा ट्रेनिंग हो रहा है वो कर्तव्य के प्रति नहीं हो रहा है, अधिकार के प्रति हो रहा है। हम सबको कैसा ट्रेनिंग हो रहा है, अधिकार, आए दिन हम देखते हैं अधिकारों के लिए लड़ाई हो रही है ना, अधिकारों के लिए लड़ाई हो रही है, हमारी मांगे पूरी करो, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, ये इसके ऊपर चर्चाएं होती हैं, इसके ऊपर चर्चाएं नहीं होती हैं। ये डिफरेंस है वर्णाश्रम सोसाइटी में और आधुनिक समाज, है ना। इसलिए हम देखते थे वैदिक सोसाइटी में, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण है, उसको भी शिक्षा देनी है, तो उसको संतुष्टि होती थी कि मुझे शिक्षा देने से संतुष्टि होती थी, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। और ब्राह्मण के लिए तो योग्यता उच्च चाहिए, सत्वगुण चाहिए, तो इसलिए जो ब्राह्मण का कार्य होता था शिक्षा देने का, वो निशुल्क होता था, शिक्षा निशुल्क होती थी, कि मुझे ज्ञान देना है, उसका कोई प्रीपेड फीस नहीं है कि मुझे पहले मुझे इतना पैसा चाहिए तब मैं दूंगा ज्ञान, नहीं, मेरे को भगवान का दिया हुआ ये कर्तव्य है, भगवान का संदेश ये पहुंचाना है, या जो भी इवन भौतिक शिक्षा भी जो देनी है, जैसे ज्योतिष है तो वो ज्योतिष का कार्य करता था, ऐसा नहीं कि वो डिमांड करता था, है ना, इस प्रकार का समाज था। और फिर दान में उसको जो भी मिलता था, जो मिल गया उससे संतुष्ट होता था, तो इतना महान उसके अंदर ही गुण होना चाहिए, तभी वो ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, केवल नाम के ब्राह्मण रह गए, जनेऊ रह गया बस दिखाने के लिए, देखो ये जनेऊ, हम ब्राह्मण, बाकी गुण ब्राह्मण के नहीं रहे और कर्म भी ब्राह्मण के नहीं रहे, है ना। इसलिए अभी आजकल जो हम भारत में देख रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो क्या है, पूरा उल्टा सीधा टूटा बूटा सिस्टम है पूरा, और वही लोग देख करके सारे संसार में लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा वर्णाश्रम देखो ऐसा है, जाति पाति, जाति पाति वर्णाश्रम नहीं है, वो तो उसका बिगड़ा हुआ रूप है। जाति मतलब जन्म से, जो जन्म जिसका जैसा जिस परिवार में हुआ वो हो गया, ऐसा ये बिगड़ा रूप है, ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल में गुण कर्म के आधार पर है, जैसे आप भगवद गीता में देखेंगे गुण कर्म विभागशः, यदि कोई शूद्र के परिवार में भी कोई ऐसा बच्चा अगर ऐसा आता है ऐसे गुणों वाला या ट्रेंड हो सकता है जो कि जिसके अंदर ब्राह्मणिकल स्वभाव है, तो उसको ब्राह्मण का कार्य करने के लिए दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं शास्त्रों में। सो हरे कृष्ण, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। सो इस प्रकार से क्षत्रिय कार्य है मुझे रक्षण प्रदान करना है, सब अपना अपना कर्तव्य के प्रति मोटिवेट होते थे, तो यहां से उनको मोटिवेशन मिलता था कि मैं अपना कर्तव्य निभाऊं। तो उसी प्रकार से एक दैव वर्णाश्रम समाज में हमें मोटिवेशन कहां से मिलता है, भगवान की सेवा के लिए, ये मेरा स्वधर्म है, मेरा ये रोल है सोसाइटी में, मुझे ये अच्छा करने से भगवान प्रसन्न होंगे, हमारा मोटिवेशन यहां से आता है, नहीं आता कि मुझे इसमें से कितना मिलेगा, अरे जो मिलेगा वो तो भगवान अपना देंगे, जितना जरूरी जितना देंगे उसमें संतुष्ट हो जाएंगे, सबको देंगे ना, अगर हम भगवान के अनुसार कार्य करेंगे तो जब जानवरों को भी दे रहे हैं, नास्तिकों को भी दे रहे हैं, तो भक्तों को नहीं देंगे, ये श्रद्धा, ये विश्वास। और फिर जैसे आप देखिए, पिता जो है बच्चे को कभी कभी मारता भी है ना, करेक्ट, लेकिन क्या फिर बच्चा क्या घर छोड़ के चला जाता है, अरे मेरे को मार दिया, उसको मार दिया, उसको थोड़ा चाटा मारा दुख होता है, लेकिन उसको पता है ये है मेरे पिता, अल्टीमेटली जो भी है मेरे भले के लिए कुछ करेंगे, उसको एक पूर्ण विश्वास होता है ना। इसलिए कभी कभी भक्तों के जीवन में कठिनाइयां भी आती हैं, ऐसा नहीं कि हमने भक्ति की तो बस हमेशा बढ़िया बढ़िया होगा, नहीं, क्योंकि हमने जो कर्म किए उस कर्म के अनुसार भगवान हमें जानबूझ करके वो कष्ट भी देते हैं, जिससे कि हम इस जगत से अटैच नहीं रह जाए, हम समझें कि हमें इस जगत से निकल के वापस भगवत धाम जाना है, इसलिए भगवान अपने भक्तों को भी कष्ट देते हैं। आप देखिए पांडव हैं, पांडव तो भगवान के भक्त थे, उनको कितने कष्ट सहने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कंप्लेंट नहीं किया, भगवान हम तो आपकी इतनी भक्ति करते हैं, आप हमें इतने सारे कष्ट दे रहे हैं। बल्कि कुंती महारानी जब पूरा महाभारत का युद्ध खत्म हो गया और भगवान कृष्ण जाने लगे वापस द्वारका, तो कुंती महारानी उनसे प्रार्थना करती हैं कि कृष्ण अभी युद्ध समाप्त हो गया, अभी हमारे दुश्मन कोई नहीं रहे, राज्य ये मिल गया, अभी सब सुख शांति हो गई, तो अभी आप वापस चले आ रहे हैं, हमसे दूर जा रहे हैं, तो इससे तो अच्छा हो कि जितने भी हमने कष्ट सहे, विपदा, वो दोबारे आए, जिससे कि आप हमारे साथ रहेंगे, वो हमारे लिए अच्छा है, आपके दर्शन होंगे, क्योंकि आपका दर्शन करने से हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल करके नित्य रूप से आपके धाम आ जाएंगे, इसलिए अच्छा है बार बार ये कष्ट आए। तो भक्त तो ऐसे प्रार्थना करता है, कितना डिफरेंस है एक भक्त के एटीट्यूड में और एक सामान्य भोगी के एटीट्यूड में। तो ऐसा जो भक्तों का समुदाय, ऐसा जो वर्णाश्रम समुदाय होगा, उसमें संतुष्टि कहाँ से आएगी, भगवान की सेवा करने से। और ये आप सबको रियलाइज करना है कि भगवान की सेवा में एक सुख है, आध्यात्मिक सुख, वो आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जब आप हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, तो एक विशिष्ट प्रकार का एक संतुष्टि आप अनुभव करेंगे, जो कोई भी भौतिक चीज को प्राप्त करने से आपको ऐसी संतुष्टि नहीं मिल सकती। जब एक जिसके अंदर थोड़ी सी भक्ति भाव है, जब वो सुनता है कि हाँ भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये भोग के पीछे भागना, इससे सब चिंताएं होती हैं, तो उसको वो अच्छा लगता है, हाँ बात सही है, बढ़िया है, ये सुनने से अच्छा लगता है ना। और फिर जब आप ऐसा ऐसा करेंगे, निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवाएं करेंगे, है ना, अलग अलग प्रकार से, तो फिर आप धीरे धीरे उसको अनुभव करेंगे और उसको आपका टेस्ट बढ़ता जाएगा, रस बढ़ता जाएगा आपका। तो इसका मतलब फिर ये नहीं है कि हमारे अपने कर्तव्य हम नहीं निभाएंगे, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि इस समाज में हम जब हैं, हमारा शरीर है, समाज है, तो हमारा एक समाज के प्रति एक कर्तव्य है, माता पिता हैं जो भी हैं उनके प्रति एक कर्तव्य है, लेकिन अटैचमेंट होकर के वो नहीं करना है, कर्तव्य के लिए करना है काम, ये अंतर है। आजकल लोग जो भी कार्य करते हैं वो किससे करते हैं, अटैचमेंट से, अटैचमेंट मतलब मुझे वो करने से मेरे को इंद्रिय भोग होता है इसलिए मैं वो करता हूं, है ना, मैं ये जॉब क्यों करता हूं, क्योंकि उससे मुझे पैसा मिलता है इसलिए मैं करता हूं, कर्तव्य की भावना से नहीं है। लेकिन भगवान का जो संदेश है, जो शास्त्रों का है, वो सब कार्य करना है इसलिए नहीं कि उसमें मेरा कुछ इंद्रिय भोग होता है। जैसे उदाहरण लें तो अभी विवाह है, तो वैदिक संस्कृति में विवाह एक धार्मिक कृत्य है, इसलिए उसका संस्कार बोलते हैं, विवाह संस्कार। तो विवाह के अंदर व्यक्ति एंटर होता है कि ये एक धार्मिक कृत्य करने के लिए हम दाम्पत्य जीवन प्रारंभ कर रहे हैं, है ना, कि हमें ठीक है अटैचमेंट है, हमें इस भौतिक जगत के अंदर एक पारिवारिक अटैचमेंट है वो है, लेकिन हम जान रहे हैं कि इसको बढ़ावा नहीं देना है, है ना, क्योंकि ये अंततः भगवत भक्ति के मार्ग में रुकावट है, जितने भी भौतिक जगत के प्रति हमारे अटैचमेंट्स हैं, लगाव हैं, वो सब रुकावट हैं, लेकिन लगाव है उसको हम कंप्लीटली तुरंत डिनाई भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम भगवान की सेवा में जोड़ते हैं। इसलिए जो स्त्री पुरुष आकर्षण है वो नेचुरल है, नेचुरल मतलब बद्ध अवस्था में वो सबको होता है। तो विवाह संस्कार है जिसमें वो भगवान की सेवा में उसको नियोजित कर दिया गया है, ठीक है, आपको स्त्री पुरुष आकर्षण है, ठीक है, आप एक वैवाहिक जीवन जिए, ना कि कुत्ते बिल्ली की तरह से सेक्स में इंडल्ज हो, नहीं, अंडर धार्मिक रेगुलेशन के अंदर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोक्रिएशन, कि एक संतान को पैदा करके उनको भगवान की भक्ति सिखाया जाए, तो इस तरह से आपका जो ये अटैचमेंट था, स्त्री पुरुष आकर्षण था, वो अभी भगवान की सेवा में नियोजित हो गया, इस तरह से वो स्पिरिचुअलाइज हो गया। तो ये मैकेनिज्म है वर्णाश्रम का, जिससे हमारी जो भी एक इंक्लिनेशन है वो भगवान की सेवा में लग जाने से वो स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। जैसे क्षत्रिय है तो उसका इंक्लिनेशन क्या है, रक्षा प्रदान करना। आजकल तो कोई क्षत्रिय है नहीं, इसलिए वो देखने को मिलता नहीं है आपको, लेकिन क्षत्रिय मतलब उसके अंदर उत्साह आता है, अगर उसको कोई ललकारे कि हाँ युद्ध करना है तो उसको आनंद आता है, हाँ अभी कुछ मिला, कोई सामने आया कुछ, हाँ। और उसे कहीं भी अधर्म देखेगा तो वो उससे रहा नहीं जाएगा। कुछ लोग होते हैं अभी, कुछ भी ऐसे हैं अभी, कुछ कुछ जाती हैं, राजपूत हैं कुछ हैं, उनका खून खोलता है, अगर कहीं कुछ गलती हो रही है, कहीं कुछ कुछ हो रहा है तो वो रह नहीं सकते हैं, जान भी दे देंगे। तो ये क्षत्रिय का ये स्वभाव होता है, कहीं भी कुछ अधर्म हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो जाके उसको रोकेगा और शेल्टर देगा, हाँ व्यवस्था करेगा सब, शेल्टर, ये क्षत्रिय का। उसी प्रकार से ब्राह्मण है तो जितना भी उसके अंदर ज्ञान है उसको उस देना है, उसी में उसको आनंद आता है। तो इस प्रकार से ये समाज में अगर इस प्रकार से संचालन होगा, इस प्रकार से व्यवस्था होगी, तो आप देखिए समाज बहुत सुख शांति से रह पाएगा और साथ साथ सबकी आध्यात्मिक प्रगति भी होगी। क्योंकि ऐसा जीवन जीने से एक तो सबको समय मिलेगा नवविधा भक्ति करने के लिए। आज सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने क्या है, समय नहीं है। हम जाते हैं कहीं भी, थोड़ा सुनिए, आइए कक्षा में आइए, भगवद्गीता सुनिए, समय कहाँ है सर, बहुत बिजी लाइफ है सबकी, और ज़्यादा बिजी होती जा रही है ना। तो जैसे मैं उस दिन आपसे बात कर रहा था, जानवरों से ज़्यादा बुद्धि है ना हमारे अंदर, तो हमें अपने शरीर की देखभाल करने में कम समय में कर देनी चाहिए। लेकिन गधे को भी हम लोग मात किए हुए हैं, गधे को भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी आज मनुष्य को करनी पड़ती है, करेक्ट। तो गधा भी हमसे अच्छा हो गया आज, तो क्यों, क्योंकि हम लोग लोभी हो गए, इसलिए वी आर नॉट सेटिस्फाइड बाई अवर बेसिक नीड्स, और उसका तो कोई अंत ही नहीं है, कितना भी करते कितना करते कभी नहीं होगा। आप देखिए अभी अंबानी है या कोई भी है, उनके पास कितना पैसा है, उनको पता नहीं कितना पैसा है, करेक्ट। उनकी कितनी कई कई जनरेशंस भी जितना चाहे उतना खर्च करेंगे तो भी वो खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो शांति से नहीं बैठे ना, शायद सबसे ज्यादा बिजी वही लोग हैं। तो आप सोचेंगे भाई हमारे पास कुछ है नहीं इसलिए हम बिजी हैं, पर जिसके पास सब कुछ है वो भी उतना ही बिजी है। क्यों, क्योंकि लोभ की वजह से कभी भी आदमी संतुष्ट हो ही नहीं सकता है, ये बीमारी है। तो समय हमें मिलेगा अगर हम इस प्रकार के जीवन, क्योंकि लोभ नहीं होगा और जीवन सरल, सरल जीवन। तो इस प्रकार से औद्योगिकरण से पहले पूरे संसार में लोगों का जीवन इस प्रकार से सरल जीवन होता था। मेनली ये जो आधुनिक चीजें ईजाद हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी और ये सब मॉडर्न एप्लायंस, हम सोचते हैं कि ये हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हमारी लाइफ को अनकंफर्टेबल बना रहे हैं। एक कंफर्ट है पर उस कंफर्ट के साथ साथ बहुत सारे डिसकंफर्ट आते हैं। अभी ये इलेक्ट्रिसिटी है, पहले लोग कैसे करते थे, प्रकाश के लिए क्या करते थे, दिया जलाते थे। अभी लाइट आ गई तो भी इतना सारा प्रकाश है, अभी तुम रात को भी काम कर सकते हैं, तो भी आदमी जो है रात को भी शांत नहीं बैठता है, नाइट शिफ्ट्स। पहले कम से कम जब अंधेरा हो गया, शाम हो गई, उसके बाद कोई काम नहीं होता था, है ना। लेकिन अभी आदमी को जो है, क्योंकि अंदर तो लोभ है और इधर लाइट है, करो रात को भी करो काम, ठीक है। अभी ऑटोमोबाइल्स हैं, पहले लोग गांव में रहते थे और यहीं पास में खेत है, सारे सगे संबंधी वहीं रहते थे, तो जाना कहाँ है, कहीं नहीं, तीर्थ यात्रा पे जाते थे जिंदगी में एक बार, बस सब काम खत्म हो गया, उसके बाद जाते थे, खत्म, चलते चलते आते थे। डे टू डे अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी को 2-4-5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था, ठीक है। तो फिर हमने अभी अपने कंफर्ट 4-5 किलोमीटर भी क्यों चलना पड़े, ये बाइक आ गई, ऑटोमोबाइल्स आ गई। तो फिर जब ऑटोमोबाइल आ गई तो फिर विचार आया, तो फिर अभी तो एक सिटी से दूसरे सिटी में भी हम जॉब कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम ज्यादा तेजी से आ सकते हैं। तो पहले लोगों का धंधा सब वहीं आसपास में होता था, अभी लोग 400-400 किलोमीटर भी दूर हर रोज ट्रांजिट करते हैं। तो जैसे जैसे चीजें बनती हैं उसके अनुसार हम अपने जीवन को ढाल लेते हैं, समस्या वहीं की वहीं बनी रहती है। जो चीज पहले कंफर्ट के लिए बनी थी आज वो केवल एक नेसेसिटी बन के रहती है थोड़े समय बाद में, करेक्ट। पहले जो कार बनी थी वो किस लिए बनी थी? घूम सैर सपाटा करने के लिए। आजकल लोगों के पास कार सैर सपाटा करने के लिए होती है, जॉब पे जाने के लिए होती है, दैट्स इट। और उसमें भी आप सिटी में जाएंगे तो वो सब ट्रैफिक में फंसे रहना, और इट्स नो मोर लग्जरी, इट्स जस्ट अ नीड, करेक्ट। तो लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? उससे हमारा समय खत्म हो गया। आज लोगों को जो है एक एक दो दो घंटे, चार चार घंटे तो कम्यूट करना पड़ता है, और इतने बड़े बड़े वर्किंग आवर्स हैं, और उसमें इतना टेंस्ड वर्क है क्योंकि अंदर इतनी सारा कंपटीशन है ना। तो उससे आदमी का दिमाग इतना वो हो जाता है कि बाकी जब घर में आता है तो भी उसके बाद में उसको कुछ शांति से बैठ के कुछ भगवद्गीता पढ़े, कुछ कीर्तन करे, ये सबका शक्ति नहीं रहती, समय भी नहीं रहता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो मॉडर्न सिटी लाइफ है उसने ना तो भौतिक दृष्टि से किसी का मदद किया है रियल सेंस में, और ना आध्यात्मिक दृष्टि से किया है। तो ये वर्णाश्रम समाज जो है ये भगवद्गीता का निर्देश है। तो इस दिशा में क्या हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं? अभी तो हम मॉडर्न सिटी लाइफ में रह रहे हैं, अभी आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, और आपको आप जो भी डिग्री लेंगे अभी उससे फिर जॉब लेंगे तो वो इसी प्रकार से ही कहीं ना कहीं होगा, जिसमें जो हमने डिस्कस किया उसी प्रकार से कहीं ना कहीं करेंगे। तो ओके, व्हाट वी शुड डू नाउ, ये प्रश्न उठता है अभी, ठीक है, व्हाट यू शुड डू इन योर स्टेज। सो देर आर फ्यू थिंग्स, कुछ ऑप्शंस हैं जो आप लोगों को विचार करने होंगे, डिपेंडिंग ऑन योर, जितना आप दृढ़ हैं, जितना आप चीज को किस स्तर पे समझ रहे हैं और किस चीज के लिए आप तैयार हैं उसके अनुसार आप वो स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का कन्विक्शन लेवल अलग अलग है उसकी, है ना। बेस्ट क्या है कि हम लोग ये जो एक सादा जीवन, उच्च विचार वाला जो जीवन है, मिलकर के ऐसी इस तरफ आगे बढ़े, और इस तरफ बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं, नॉट इस्कॉन डिवोटीज, इवन आउटसाइड पीपल। आप जानते हो कई लोग IIT से बाहर निकल करके गांव में जा करके दे आर डूइंग लाइक एग्रीकल्चर करेंगे, कुछ इस प्रकार का सिंपल लाइफ जिएंगे। वो सब खूब कर सकते थे, पैसा कमा सकते, लेकिन उन्होंने देख लिया कि ये इसमें केवल परेशानी है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द IIT दे कम एंड दे स्टार्ट समथिंग लाइक दैट, और दूसरों को भी वो इस प्रकार से मदद करते हैं हाउ टू एस्टैब्लिश इट। फॉरेन के अंदर, तो फॉरेन के अंदर डिग्री का इतना क्रेज नहीं है, वो इंडिया में है। डिग्रीज का एक क्रेज जो है वो इंडिया में है। तो वहां के लोग तो देख रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन से क्या हो रहा है। इंडिया में तो एक कन्विंस करना लोगों को बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में सबके अंदर क्या है, इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस, सबके दिमाग में छाया हुआ है। इंडियंस को कन्विंस करना कि हम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वेस्ट में आप जाएंगे मैनी पीपल नो कि वी आर रॉन्गली हेडेड, क्योंकि उन्होंने वो सब देख लिया है बहुत कुछ आगे का, और उसकी क्या परेशानियां वो सब भुगत रहे हैं। सो वहां पर बहुत से लोग हैं जो अभी बैक टू अर्थ मूवमेंट, गो ग्रीन, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स चल रहे हैं। तो ये आधुनिकीकरण के से बाहर निकल करके एक सिंपल लाइफ की तरफ लोग चल रहे हैं। और हमारे जो फाउंडर आचार्य थे श्रील प्रभुपाद, उन्होंने 1970s में जब ये निर्देश दिए डिवोटीज को कि आप लोग ऐसा पायलट प्रोजेक्ट्स बनाइए जिसमें कि हम अपना खेती करेंगे, अपना खाना खुद उगाएंगे, अपना कपड़ा खुद उगाएंगे, अपने मकान का सामान खेती प्राकृतिक चीज़ों से मकान बनाएंगे, है ना, और इस प्रकार से एक सिंपल लाइफ जिएंगे, सो दैट वी कैन सेव आवर सेल्फ फ्रॉम सो मेनी मॉडर्न प्रॉब्लम्स दैट वी हैव क्रिएटेड, है ना, एक्सीडेंट्स प्रॉब्लम, पोल्यूशन प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, ये सब किस लिए आता है? अननेसेसरी कॉम्पिटिशन, है ना। आपके पास अगर जमीन है आप उसमें मेहनत करो, आपकी ये स्ट्रेसफुल लाइफ से तो कम मेहनत है, यहाँ पर फिजिकल ज़्यादा है, मॉडर्न लाइफ में मेंटल ज़्यादा है। सो मेहनत करें और अपना खाना हम खुद उगा सकते हैं, एंड वी कैन कीप फ्यू काउस, उससे दूध और सब प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, विच इज़ वी कैन कीप योर बॉडी वेरी हेल्दी। और प्राकृतिक चीज़ें खाने से बीमारियां इत्यादि, और वो मेहनत का जो जीवन है, मेहनत मतलब नॉट, हम सोचते हैं कि कृषि मतलब बहुत मेहनत है, हमारे सब पिताजी दादाजी अगर किसान हैं तो हमको ये बोलेंगे, अरे बेटे बहुत मेहनत है इसमें, तो बहुत हमने करके देख लिया, तुम ये मत करना। करेक्ट, ऐसे ही बोलते हैं सब लोग, है ना। तो क्योंकि वो भी ब्रेन वॉश्ड है आज के आधुनिक प्रोपेगेंडा से, सबको क्या वाइट कॉलर जॉब चाहिए, है ना, ऑफिस में बैठे बैठे, हाँ उनको लिखता है, हाँ उनको सब कुछ बताया गया, सिखाया गया कि ये जीवन है, अच्छा ऑफिस में बैठना है ना, लेकिन उनको पता नहीं कि ऑफिस में आजकल का जीवन कैसा है, एसी के अंदर बैठ बैठ के पसीना आता है लोगों को, इतना टेंशन है अंदर। करेक्ट, और उससे इतनी सारी बीमारियां होती हैं, और फिर वो पहले जो मेहनत करते थे खाना उगाने के लिए, अभी आज एसी में बैठ करके लोग सेडेंट्री लाइफ जी करके बीमार होते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर बोलता है हर रोज आपको एक घंटा वॉक करना है और चलना है और भागना है, फिर घर में एक ट्रेडमिल लेके आते हैं खर्चा करके और उसके ऊपर भागते हैं पैसा देकर, ठीक है, या जिम में जा करके वो वेट लिफ्टिंग करते हैं, उसकी जगह फावड़ा नहीं चला सकते, लेकिन वो पैसा दे करके वो वही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जीवन में अपने आप नेचुरली, क्योंकि हमारी बॉडी बनी है काम करने के लिए, तभी बॉडी हेल्दी रहेगी, आप बैठे बैठे रहेंगे तो बीमार होगी, वो नेचर है बॉडी का, है ना। स्त्रियां जो हैं आजकल सब उसी प्रकार से, नो बडीज वर्किंग, पहले सब चक्की चलाना, आटा, कपड़े धोना, सो बॉडी हेल्दी रहती थी, ये एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से श्री प्रभुपाद ने भक्तों को निर्देश दिए, तो उसी डायरेक्शन में अलग अलग जगह पर इस प्रकार के प्रयास चल रहे हैं। सो मैं आपको कल बता रहा था, सो गुजरात में एक प्रयास में मैं भी संबंधित हूँ, गुजरात में अभी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है उसी के पास में, वहीं से 8-10 किलोमीटर दूर एक गांव में, एक अराउंड 40 एकर्स ऑफ लैंड पर ये एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है फॉर द लास्ट 6-7 ईयर्स। तो उसमें हम कुछ लोगों ने ये सब समझ करके डिसाइड किया कि हम लोग इस प्रकार का जीवन जिएंगे, गृहस्थ लोग हैं यानी कि फैमिली मेम्बर्स, तो उनके जॉब थे सिटीज़ में, तो वो लोग पूरा जब तैयार हुए तो उन्होंने अपने जॉब भी छोड़े, रिज़ाइन किया, और वहाँ पर आकर के कुछ लोग अपने बच्चों के लिए वो टीचर्स का रोल प्ले करने लगे, कुछ लोग खेती कर रहे हैं, कुछ लोग वीविंग, ऐसे इस प्रकार अभी 20 फैमिलीज वहाँ रहती हैं, उसमें से कुछ किसान हैं, कुछ कपड़ा बुनते हैं, कुछ बच्चे जो हैं उनको गुरुकुल है उनको पढ़ाते हैं, इस तरह से एक बिना लाइट के रहते हैं, लकड़ी पे खाना बनता है और दीपक तेल के दीपक पे रहते हैं, और इस तरह से एक प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं, और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उनको देख करके धीरे धीरे लोग आकर्षित हो रहे हैं वैसा जीवन जीने के लिए। सो उसमें से कुछ लोग अभी युवा लोग IIT बॉम्बे से PhD करने वाले एक नव युवक वहाँ पर अभी आए हैं। सो इट्स अ ट्रेंड कि आज का जो यूथ है तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी डायरेक्शन हो सकती है, कि ऐसा नहीं है कि ठीक है ये जॉब करना यही एकमात्र डायरेक्शन है इसी मॉडर्न लाइफ में। जो लोग बोल्ड हैं और जो लोग इस बात को समझ रहे हैं, दे कैन अंडरस्टैंड कि ये रास्ते में जाने में तो वही घिसी पिटी और मोर एंड मोर स्ट्रेसफुल लाइफ ऐसी होने जा रही है, और जो लोग देख रहे हैं कि ये पूरे समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं, तो वो लोगों के लिए ये रास्ता भी है कि अभी आप लोगों की बॉडी भी इतनी स्टिल रिलेटिवली यंग, स्टिल यू कैन लर्न फार्मिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, और केवल फार्मिंग नहीं है उसमें बहुत सारी वैरायटी है, उसमें भी उसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हैं, है ना, उसमें ज्योतिष और वास्तु शास्त्री और बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, ट्रेडिशनल उसमें भी। सो दैट इज़ वन एफर्ट विच इज़ गोइंग ऑन एंड दैट इज़ वन डायरेक्शन। दूसरा, जो लोग अब इसके लिए तैयार नहीं हैं फॉर डिफरेंट रीजंस, तो ठीक है अभी हम उस प्रकार के, क्योंकि ये अभी पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, सब जगह अवेलेबल भी नहीं है, छोटे स्तर पे हैं, तो इस वजह से भी मुश्किल हो सकती है, या आप पर्सनली उसके लिए अभी तैयार नहीं हैं, ऐसा भी हो सकता है, तो फिर क्या करें। नेक्स्ट, तो फिर क्या करें। सो एसेंस जो है, एसेंस में ये जो वर्णाश्रम का प्रिंसिपल है उसको एसेंस में आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं व्हाइल यू आर इन दिस मॉडर्न लाइफ, आप स्टडीज कर रहे हैं या बाद में आप जॉब करेंगे, उसमें भी ये सिद्धांत का जो एसेंस है वो आप अभी भी पालन कर सकते हैं। कैसे? आप पूरे संसार को देखा देखी लोभ करके उनके पीछे मत भागिए, अपने जीवन को सरल रखिए, अपनी आवश्यकताओं को लिमिटेड रखिए, स्टिल उसका जो एसेंस है वो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको समय निकालना है भगवान की भक्ति सेवा के लिए, श्रवणम कीर्तन के लिए। तो अगर हम जो समाज में चल रहा है कि सबसे टॉप पे जाना है, सबसे टॉप पे जाना है, जितना हो सके सारी शक्ति वहीं लगानी है, उसकी जगह अगर आप समझ रहे हैं कि दिस इज द गोल ऑफ लाइफ और बॉडी को मेंटेन करने के लिए करना है, सो ओके मॉडरेट लेवल पर यू कैन कीप योर सेल्फ, हवस नहीं, ठीक है, एक लिमिट्स में अंदर रह करके यू कैन गो। यानी कि हर दिन कुछ समय निकालिए फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ, फॉर योर दिस थिंग, और जो आपकी स्टडीज हैं इत्यादि या जॉब है जो भी है उसको भगवान की सेवा के साथ जितना हो सके उतना जोड़िए, स्पिरिचुअलाइज कीजिए। उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर नॉलेज है आपके पास, आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो कैसे उस ज्ञान को आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, दैट कैन बी द स्टार्टिंग बिगनिंग। टेम्पल कंस्ट्रक्शन होते हैं, सो यू कैन भगवान के लिए मंदिर बनाने में आप अपनी सिविल इंजीनियरिंग का उपयोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिफरेंट थिंग्स वो आप ब्रेन लड़ाइए एंड वी कैन ऑल्सो हेल्प यू। दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट योर सेल्फ, योर जो भी आपके अंदर आपने सीखा है, जो भी आपके अंदर है उसको आप कैसे भगवान की सेवा में मोड़ सकते हैं। कई सारी चीज़ें इसमें यूज हो सकती हैं भगवान की सेवा में, सो दिस कैन बी ए बिगनिंग, दिस कैन बी ए बिगनिंग कि आप ठीक है आधुनिक जगत में ही हैं, क्योंकि आधुनिक जगत में प्रचार होना है ना, लोग तो ज़्यादातर अभी आधुनिक समाज में ही हैं, इसलिए हम आधुनिक चीज़ों का उपयोग करेंगे भगवान की भक्ति में, जिससे वो समझें कि ये आधुनिकता अल्टीमेटली भगवान से हमको दूर ले जा रही है। जैसे एक कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी का यूज़ हम करते हैं पेड़ काटने के लिए, लेकिन उस कुल्हाड़ी का हत्था उसी पेड़ का लकड़ी का ही बना होता है। सो उसी प्रकार से जो आधुनिक चीज़ें हैं, हालांकि ये भगवान से हमको दूर ले जाती हैं, लेकिन जब तक ये आधुनिक जगत है तब तक ये आधुनिक चीज़ें रहेंगी, तब तक इनका बेस्ट यूज़ है कि इन आधुनिक चीज़ों का भी जहाँ जहाँ संभव हो इनका यूज़ भी भगवान की सेवा में हो जाए। जैसे अभी ये कैमरा है, ये भी एक मॉडर्न चीज़ है, ये कोई आवश्यक नहीं है संसार में, संसार के लिए भगवान की सेवा के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने उसको क्यों बनाया, कैमरे का इन्वेंशन क्यों किया है लोगों ने, भगवान की सेवा के लिए किया है नहीं, किस लिए किया है, एन्जॉयमेंट के लिए किया है, लेकिन हम अभी इसका उपयोग कर रहे हैं भगवान की सेवा। तो इस तरह से लोग जो भी अपने एन्जॉयमेंट के लिए चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं हम उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं यथासंभव, नॉट एवरीथिंग, फॉर एग्जाम्पल वाइन वी कैन नॉट यूज इट इन सर्विस ऑफ कृष्णा, करेक्ट, लेकिन जो जो चीज़ें लग सकती हैं उनको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे अभी हम ये पूरा कैंपस है या रूम है इसमें बैठे, ओके यूज इट, दैट इज बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, इट इज नॉट द हाइएस्ट थिंग, ये भगवान की सेवा का सर्वश्रेष्ठ स्तर नहीं है, बट इट इज द बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। ये समझते हैं आप ये फ्रेज बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, मतलब ये सब बेकार है, ये सब भगवान की सेवा के लिए हमारा ध्यान खींचती है दूसरी तरफ, लेकिन अभी है तो है तो इसको भी भगवान की सेवा में लगाकर कम से कम इसका बेस्ट पॉसिबल यूज यही है, लाइक दैट, गॉट इट, तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा, जो भी हम कार्य कर रहे हैं कम से कम उसका जो फल है लक्ष्मी उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, इस तरह से वो जो आपका कार्य है वो कनेक्ट हो सकता है। टॉप हम वही करें जो भगवान चाहते हैं, दैट इज बेस्ट, वो नहीं कर पा रहे हैं फॉर डिफरेंट रीजंस, दिस इज सेकंड ऑप्शंस, ओके लेट्स कनेक्ट, जो भी हम हैं उसको कनेक्ट करें, उसको नियोजित करें भगवान की सेवा से, उससे हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, और एक दिन हो सकता है हमको ऐसा अवसर मिले, शक्ति मिले जिससे कि हम वही कर पाएं जो भगवान चाहते हैं। सो अभी आपकी स्टडीज़ हैं, तो हम लोग इस प्रकार से प्रचार नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं कि आप भगवान की भक्ति करोगे तो आपके खूब अच्छे मार्क्स आएंगे, आपका खूब अच्छा जॉब लगेगा, आप खूब मटेरियली प्रोग्रेस करोगे। दिस इज चीटिंग, क्योंकि भगवान का संदेश ये नहीं है। भगवान का संदेश है शुद्ध भक्ति, भगवान की सेवा में कुछ बदले में कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं करनी है। भगवान भक्ति करूंगा मेरे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, वो फिर भक्ति नहीं हुई, शुद्ध भक्ति नहीं हुई, ठीक है। इसलिए इस प्रकार से हम प्रोपेगेट नहीं करते हैं कि आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आपके मार्क्स आपके अच्छे आए नहीं आए, वो कर्म के आधार पर आपको जो है वो मिलेगा। तो आप उसके लिए यथासंभव आपका जो समय है उसके अंदर प्रयास कीजिए और फिर जितना भाग्य में उतना मिलेगा। ऐसा नहीं कि बहुत अत्यधिक प्रयास करने से निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है, उसका भी एक सीमा है, ठीक है। तो ठीक है, समय होना चाहिए। तो सार है जो उसका, एक भौतिक शरीर को मेंटेन करने के लिए एक समय चाहिए, समय देना है। उस समय में आप अपनी वर्तमान समय में आप स्टडीज़ कर रहे हैं या कोई जॉब करेंगे तो वो कीजिए, और जीवन में हर दिन नित्य रूप से कुछ समय निकालिए नवविधा भक्ति के लिए, और जो आपके मटेरियल कार्य हैं उनको भी कनेक्ट कीजिए भगवान की सेवा में, जिस तरह से भी आप कर सके, जो मैंने आपको तरीके बताए। और ये जो पूरी भगवत गीता है इसको अच्छे से समझिए, इसकी पूरी डेप्थ को। अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, सो ये जो आपके पास 4 साल हैं इसमें, क्योंकि 4 साल के बाद में आपको बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने होंगे जीवन में, है ना। तो कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बड़ा ज्ञान भगवद गीता का ज्ञान है, जो आपको पूरा बेसिस आपको बताएगा जीवन में क्या कैसे सब कुछ। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है कि ये 4 साल में आप भगवद गीता को पूरा स्टडी करें अच्छे से, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का कुछ पोर्शन, कुछ एसेंस। तो इसलिए पढ़ाई साथ साथ चलती रहेगी, ठीक है, और कुछ समय रेगुलरली आप भगवदगीता स्टडी में देंगे। तो लाइक ये सेमेस्टर के बाद में सेकेंड ईयर से हम लोग एक ऐसे भगवदगीता स्टडी क्लब की तरह से पूरा श्लोक लेकर के, इंपॉर्टेंट श्लोक भगवदगीता का सीरीज बाय सीरीज, उसको हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। तो धीरे धीरे ये पूरा, जब आपको भगवदगीता का नॉलेज होगा तो 4 साल बाद आप सही प्रकार से जॉब में जाना है तो उसमें भी किस प्रकार के जॉब में आपको जाना चाहिए जिसमें कि आपको समय मिल सके, है ना। सो मेनी जो भी डिसीजंस हैं, वर्ण के डिसीजन, आश्रम के डिसीजन, ये सब डिसीजन वो ज्ञान पे आधारित होंगे। इसलिए आपको अपने को ये 4 साल में मजबूत करना है इस ज्ञान से, और प्रैक्टिस करके वो रियलाइजेशंस, वो आपके अंदर स्फूर्ति भी आनी चाहिए, वो भावना और वो अटैचमेंट भगवान की सेवा करने का, तभी आप जीवन भर वो कर पाएंगे। क्योंकि फिर आप यहाँ से जाने के बाद पता नहीं किस किस सिचुएशन में कहाँ कहाँ होंगे, आपको संग मिलेगा नहीं मिलेगा, एसोसिएशन ये सुनने को मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अभी ये फाउंडेशन है आपका। तो ये जो 4 साल हैं अलॉन्ग विद द स्टडीज, आप इसको स्पिरिचुअल फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में लगाइए, जिससे कि आप ये 4 साल के बाद जो भी डिसीजन है आप सही बुद्धि में सही चेतना में फिर ले पाएंगे करना है। इस ये टारगेट से ये हम क्लासेस अरेंज कर रहे हैं। सो ये हमने इसलिए क्लियर किया क्योंकि हमारा टॉपिक था स्ट्राइकिंग बैलेंस बिटवीन योर डिवोशनल सर्विस एंड मटेरियल स्टडीज। सो दैट्स व्हाई वी टुक दिस 3 क्लासेस टू क्लियर अप दिस होल। हमारा स्टैंड क्या है इस तरफ, व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग, वी आर नॉट सेइंग कि आप लोग पढ़ाई मत कीजिए, यू जस्ट चैंट, इवन इफ यू वॉन्ट यू कैनॉट चैंट 24 आवर्स बिकॉज वी डोंट हैव अटैचमेंट टू चैंट लाइक दैट, और वो प्रैक्टिकल नहीं है आपके लिए, और मेटेरियली भी कुछ ना कुछ हमें करना है कार्य। सो इसलिए वी डोंट से दैट यू डोंट स्टडी, वॉट वी से इज जीवन में दिन में कुछ समय निर्धारित कीजिए, पढ़ने के समय में पढ़ाई कीजिए, ध्यान से पढ़ाई कीजिए, और कुछ समय निकालिए भगवदगीता स्टडी करने के लिए, और उस समय में केवल भगवदगीता स्टडी कीजिए। मन क्या बोलेगा भगवदगीता स्टडी करने के टाइम में, अरे यार इस समय पढ़ लेता तो अच्छा होता, और जब पढ़ाई करने जाएंगे तो फिर आएगा अरे यार वो भगवदगीता पढ़ता तो अच्छा होता। सो माइंड चीट्स लाइक दैट. सो सेग्रीगेट योर टाइम डिपेंडिंग ऑन हाउ मच इंस्पिरेशन यू आर हैविंग, उतना समय निकालिए. आपको एक राउंड चैंट करने का इच्छा है या आपको अच्छा लगता है उतना करिए. धीरे धीरे आप बढ़ सकता है जैसे जैसे आपकी स्मृति बढ़ेगी. और आप देखेंगे कि कभी आपका ऐसा नहीं होगा उससे आपको नुकसान होगा, क्योंकि बहुत सारा समय हमारा वेस्ट होता है और हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है. लेकिन जैसे जैसे हम भगवद्गीता पढ़ेंगे और ये जप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आप चाहते हैं उसमें अपना ध्यान लगा पाएंगे, क्योंकि आपके माइंड के अंदर एक क्लैरिटी होगी, जीवन के पूरे जीवन के प्रति एक क्लैरिटी आएगी. ये जीवन का लक्ष्य है, मुझे ये करना है, मेरी ये क्षमता है. सो एवरीथिंग विल बिकम मोर एंड मोर क्लियर. और जब क्लैरिटी आएगी तो आप जो भी काम करेंगे उससे ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाएंगे. मैं अपने जीवन में से देखूं तो मैंने जब मैं MBBS करते हुए सेकेंड थर्ड ईयर में मैं जब संपर्क में आया, सो देन आई स्टार्टेड चैंटिंग वन राउंड. और उस समय एक राउंड चैंट करना भी बहुत लगता था, अरे 10 मिनट निकालना एक दिन में हर रोज, ये बड़ा लगता था. सो देन कुछ मेरे सीनियर्स थे कुछ लोग, सो उनसे मैं मिला. वो भी कृष्णा कॉन्शियस फॉलो करते थे. सो मैंने पूछा आप कितने राउंड्स करते हैं, बोले हम 16 राउंड्स करते हैं. तो मैं तो बेहोश हो गया, एक स्टूडेंट कैसे एक दिन में इतना समय निकाल सकता है. इट टेक्स 2 आवर्स टू चैंट 16 राउंड्स, है ना. तो मुझे लगा ये तो पॉसिबल नहीं है. फिर एक दिन करते 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 धीरे 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 वन डे आई वाज आल्सो चैंटिंग 16 राउंड्स व्हाइल डूइंग माय MBBS. लेकिन फिर क्या हुआ, बहुत सारी जो वेस्टेज थी वो सब खत्म हो गई. पढ़ाई के टाइम में पूरा फोकस होकर हम पढ़ सकते थे, इसलिए वहाँ से समय बचता था. और वो सब इधर उधर वेस्टेज बहुत सारी होती है, अगर हमारा हमको पता है हमें करना है तो हम वेस्टेज को कम कर लेंगे. सो द पॉइंट इज कि ऑर्गेनाइज कीजिए अपने टाइम को, टाइम मैनेजमेंट, टेक आउट टाइम फॉर योर मटेरियल स्टडीज. उसके लिए आपको तो वैसे भी पूरा समय तो उसके लिए वैसे भी नहीं चाहिए, ठीक है. तो जितना समय चाहिए उसके लिए दीजिए, जो आपका बाकी समय है उसमें से निश्चित कीजिए ये समय, और उसको कीजिए, निश्चित करके उसको कीजिए. ऐसा नहीं कि अभी स्टडीज एग्जाम्स ये दिस एंड दैट तो उसको पूरा नेग्लेक्ट कर दिया, या घर में गए अभी घर में भूल गए पूरा, क्योंकि वो ब्रेक हो जाएगा तो आपका जो इंटरेस्ट जो क्रिएट हुआ है वो रुक जाएगा. इससे उसमें कंटिन्यूटी चाहिए, उसको ब्रेक मत कीजिए. जो क्लासेस होती हैं, सत्संग होता है, उसमें ब्रेक मत कीजिए, रेगुलर आइए एज मच एज पॉसिबल. कोई बहुत इमरजेंसी है, कोई बहुत दूसरी चीज़ें ऐसे तो दूसरी बात है, अदरवाइज बी रेगुलर इन द क्लासेस. और एसोसिएशन में रहना बहुत जरूरी है डिवोटीज के साथ में, है ना. अगर आप ऐसे लोग जो इस बारे में इच्छुक हैं उनके बारे में उनसे सुनेंगे नहीं, उनके टच में नहीं रहेंगे, तो फिर ये स्फूर्ति बनाए रखना, इंटरेस्ट बनाए रखना वो मुश्किल हो जाएगा, है ना. तो दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट यू टू डू. मटेरियल स्टडीज आप जो भी आपका आवश्यकता है वो कीजिए, लेकिन उसके पीछे पागल नहीं कि बस दिन रात बस वही है, समय ही नहीं है चैंटिंग के लिए, सुनने के लिए. ऐसा मत कीजिए. वो करने के बाद भी भाग्य के अनुसार जितना है उसके लिमिट के अंदर ही आपको मिलने वाला है, ऐसा कुछ अनूठा नहीं होने वाला है. सो दिस इज अवर मैसेज इन शॉर्ट. हरे कृष्णा. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन नाउ अबाउट दिस? कोई भी मन के अंदर शंका है तो पूछिए. इफ़ यू हैव एनी थिंग विच इज़ प्रिकिंग यू कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, जो भी है, लेकिन मन से कीजिए. अगर आपको इसमें फल प्राप्त करना है तो मन से कीजिए, उत्साह से कीजिए. वी कैन डिस्ट्रीब्यूट प्रसादम साइमल्टेनियसली. हाँ हाँ. तो अभी आत्मा जो है, आत्मा तो दिखती नहीं है, है ना, दिखती नहीं है आत्मा. शरीर माध्यम है हमारी आध्यात्मिक क्रियाओं करने का. अभी हम बोल रहे हैं, हाथ से कुछ कर रहे हैं, वो शरीर से कर रहे हैं ना, ठीक है. क्योंकि आत्मा इस समय शरीर के माध्यम से कार्य कर रही है, तो इस तरह से शरीर के कार्य अभी आत्मा के कार्यों में संलग्न हो रहे हैं, ठीक है. अभी हम भगवान का नाम ले रहे हैं, जीव ला रहे हैं ना, तो वो भी तो बहुत ही शरीर है. तो जब हम पैर छूते हैं तो हम छू रहे हैं शरीर, लेकिन किस भावना से छू रहे हैं कि ये हमसे बड़े हैं, ये भगवान के विषय में हमसे आ जानते हैं. तो वो प्रणाम करके हम अपनी एक मनोभावना को डेवलप कर रहे हैं कि आई नीड टू रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही कैन गिव मी नॉलेज अबाउट कृष्ण. तो वो जो हमारी भावना है वो सही माइंड को माइंड फ्रेम को क्रिएट करती है जिससे हम सुनने के लिए तैयार होते हैं, है ना। अगर हमारे अंदर एक चैलेंजिंग एटीट्यूड है, ठीक है, क्या है बोलो, सो देन ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये एटिकेट है गुरुजनों का नमन करना, प्रणाम करना, उससे एक प्रॉपर माइंड का एटीट्यूड बनता है जिससे हम ग्रहण कर पाते हैं। यस, एनी अदर क्वेश्चन? आज के दिन, आज के दिन कहाँ पढ़ा आपने? आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इट इज। एक भगवद्गीता दें, भगवद्गीता में 8वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो योगी लोग होते हैं, जो अष्टांग योग में सिद्धि प्राप्त करते हैं, यानी जिन्होंने भोग वासनाओं से अपने को पूरा अलग कर लिया है, वो लोग अपनी स्वइच्छा से प्राण त्याग सकते हैं, जैसे भीष्म पितामह ने त्यागे थे। तो वो उत्तरायण, ये जो समय है पूरा आज से शुरू होकर के, उत्तरायण मतलब अभी सन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चला जाएगा, तो अभी से लेकर के पूरा उत्तरायण का समय, मैं श्लोक आपको बताता हूं इसमें क्या है। Chapter 8 का, those who know the supreme Brahman attain the supreme by passing away from this world during the influence of fiery god in the light at an auspicious moment of the day during the fortnight of waxing moon or during the 6 months when the sun travels in the north। तो ये condition में जो योगी, जो ब्रह्म को जानता है, जब वो देह त्याग करता है, तब वो ब्रह्मलोक, आध्यात्मिक जगत की तरफ जाता है। ये किसके बारे में बात हो रही है? जो लोग ब्रह्म से आ सकते हैं, जो भौतिक जगत से अभी अना सकते हैं, है ना। और इस पूरी प्रक्रिया में बताया है कि भगवान का चिंतन करते हुए और इस योग साधना करते हुए जो त्यागते हैं, वो उनको वो गति प्राप्त होती है। अभी कोई व्यक्ति सुसाइड कर ले इस समय में आकर के, तो ऐसा नहीं कि उसको जो है वो गति प्राप्त होगी, उसको नरक प्राप्त होगा, है ना। तो शॉर्टकट नहीं है ये। यस, तो ये भगवान का चिंतन साथ साथ करना ही होगा। लेकिन बताया है कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है, वो चाहे किसी भी समय मरे, वो भगवत धाम चला जाएगा, जो भगवान का भक्त है, जो जिसको भगवान से आसक्ति हो गई है। तो इसलिए वो आसान तरीका है। भगवान बताते हैं इसी अध्याय में कि जो मेरे भक्त हैं, उनको तो मैं संसार से खुद ले आने के लिए आता हूं। तो भगवान हमारा तो हाथ पकड़ के ले जाते हैं भक्तों का, तो वो ज्यादा आसान तरीका है ना। यस, एनीथिंग एल्स? अरे और भी है प्रसाद? फिनिश, ओके ओके। सो दोज हु हैव फिनिश्ड, दोज हु वांट टू गो, यू आर फ्री। हरे कृष्ण। आज तो आप वहां पर अगर हो सके तो पढ़िए, तो इसके माध्यम से आपको एसोसिएशन मिलेगा श्रील प्रभुपाद का, जिन्होंने पुस्तक लिखी है। तो जहां भी आप रहें, वहाँ जप कीजिए और ये कुछ पढ़िए प्रभुपाद की पुस्तकें, तो आपको वो संग मिलेगा। और जब यहाँ हैं तो अच्छे से एसोसिएशन लेके उसको स्ट्रांग बनाइए, जिससे कि आप जब घर जाएं तब भी आप वही चेतना को मेंटेन कर पाएं। स्ट्रेंथ लेके जाइए यहाँ से जाने से पहले, तो अभी जब यहाँ हैं तब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो वाइंड अप कीजिए। ठीक है, सोचो।